आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी हरकतें सुधार लीजिए। बहुत जुबान लड़ाने लगी है आजकल। अपनी सीमा मत भूलिए, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं। बेगुस्से से गरजे। उनकी बातें सुनकर आन्या की आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, आपको याद ही कब था कि मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे पिता हैं। आपको कभी मैं नजर आई ही नहीं, मेरे आंसू कभी दिखे ही नहीं आपको। आपको दिखता है तो बस अपनी पत्नी के आंसू, सुनाई देती है तो बस उनकी बातें। मैं तो कभी थी ही नहीं। जानती हूं आज भी आपको वही सही लगेंगी, इसलिए मुझे आपसे कुछ कहना भी नहीं है। अगर आपको मेरी रत्ती भर भी फिक्र होती तो आज मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खड़े होते। जो लड़का आपकी बेटी को रात के वक्त अकेले बीच जंगल में ये कहकर छोड़ आया कि अब से उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपकी पत्नी चाहती है कि मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लूं और आपको कोई आपत्ति भी नहीं है। आप भी चाहते हैं कि मैं निहाल से शादी कर लूं सिर्फ इसलिए कि मुझे इस घर से निकाल सकें। पर मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी जिसकी नज़रों में ना तो मेरा खुद का कोई वजूद है ना ही आत्मसम्मान। आप दोनों को मुझसे छुटकारा चाहिए तो कह दीजिए मुझे, मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, कभी वापस भी नहीं आऊंगी। पर मैं निहाल से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी तू शादी? शादी तो तुझे किसी भी हाल में करनी ही होगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती तू शादी और कैसे तू इस घर से बाहर कदम रखती है। अब तो तू अपने कमरे से उसी दिन बाहर निकलेगी जिस दिन तू शादी के लिए हाँ कह देगी। वे उसके बाल पकड़ते हुए उसे उसके कमरे की तरफ खींचते हुए ले जाने लगे, पर आन्या ने एक शब्द नहीं कहा। होठों को दांतों के नीचे दबाकर किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करने लगी। उन्होंने उसको कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा लगाते हुए बोली, जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कह देती ना तुझे कुछ खाने को मिलेगा न ही पीने को। मैं भी देखती हूँ तेरा ये घमंड कब तक रहता है। जब दो दिन भूखे प्यासे रहेगी तो सारा गरूर चूर चूर हो जाएगा और खुद नाक रगड़ते हुए आएगी मेरे कदमों में और कहेगी कि तैयार है तू शादी करने के लिए। यहाँ से आज़ाद तो तू तभी होगी जब शादी करके निहाल के घर जाएगी। उससे पहले ना तो इस कमरे से बाहर जा सकती है और ना ही घर से बाहर कदम रख पाएगी। ठीक है, देख लीजिए, मेरा गरूर नहीं, ये मेरा आत्मसम्मान है। अगर मैं भूखी प्यासी मर भी गई तब भी मैं यही कहूंगी कि मैं निहाल से शादी नहीं करूंगी, अंदर से आन्या ने चिल्लाकर कहा। पर काबेरी जी ताला लगाकर वहां से चली गई और निहाल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ करना बेटा, आजकल जरा जरा सी बात पर बहुत गुस्सा और जिद करने लगी है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर अंदर बंद रहेगी तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, फिर वो खुद आपको फोन कर लेगी। ये शादी नहीं टूटेगी, आप निश्चिंत रहिए, निहाल ने जी आंटी कहा, फिर दोनों से विदा लेकर चला गया। कावेरी जी ने अब अजीत को देखकर गुस्से से कहा, हरकतें देख रहे हैं उसकी, इतने नाजों से पाला है हमने उसे और कैसे बदतमीजी से बात करती है वो हमसे, दिन ब दिन और जिद्दी और बदतमीज होती जा रही है। हम तो माँ बाप हैं तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, कल को उनकी शादी होगी, दूसरे के घर जाएंगी तो कैसा होगा। हमें तो बहुत चिंता हो रही है, जवान लड़की है और लक्षण ठीक नहीं है उसके, हाथ से निकलती ही जा रही है, अब तो मारपीट का भी कोई असर नहीं होता। देखा था आपने कैसे आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रही थी। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके निहाल से उनकी शादी करवा दीजिए, अगर बात हाथ से निकल गई और ये रिश्ता टूट गया तो कोई शादी नहीं करेगा आन्या से। वैसे भी बेटियाँ कितनी जल्दी अपने घर चली जाएं उतना अच्छा होता है। अगर आप कहें तो मैं समधन जी से शादी के बाद आगे बढ़ाने को कहूँ, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाएगी और शादी के बाद शायद आन्या भी सुधर जाए। उन्होंने अजीत जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और उन्होंने बड़ी आसानी से सहमति भी जता दी। कावेरी जी की आंखों में चमक आ गई। आन्या की शादी के बाद निहाल उन्हें 10 लाख रुपए देने वाला था, इसलिए वो जल्दी से उससे उसकी शादी करवाना चाहती थी। पर ये बात अजीत जी नहीं जानते थे, वही आन्या से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। वो जानती थी उसकी सौतेली माँ उसको शादी के नाम पर एक ऐसे लड़के के हाथ बेच रही है जिसकी नज़रों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बस उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था। पहले भी उसने रिश्ते से मना किया था पर उन दोनों ने तब भी उसको ऐसे ही टॉर्चर किया था। एक हफ्ते तक वो बिना पानी और खाने के कमरे में बंद रही थी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। आन्या चाहती थी कि वो मर जाए क्योंकि यहाँ वैसे भी कोई उससे प्यार नहीं करता था। उसकी माँ उसको जन्म देने के बाद ही स्वर्ग से धार गई थी, उसके बाद दाई माँ ने ही उसको संभाला था। वो 3 साल की थी पर उसके पापा ने तब तक भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा था, बस उसकी पैसों से जुड़ी जरूरतें पूरी करते रहे थे, शायद अपना फर्ज निभा रहे थे क्योंकि आखिर में आन्या उन्हीं की बेटी थी। एक दिन अचानक वे अपने साथ कावेरी जी को ले आए। दोनों ने शादी कर ली थी। उस दिन उन्होंने आन्या का चेहरा देखा था और उसे बस इतना कहा था कि अब से कावेरी जी ही उसकी माँ है और वहां से अपने कमरे में चले गए। वो नन्ही सी 3 साल की बच्ची जिसने कभी ना तो अपनी माँ के प्यार को महसूस किया था ना ही अपने पिता को देखा था, वो एकटक कावेरी जी को देखने लगी थी। दाई माँ के साथ उसके 3 साल बीते थे, उसके लिए वही सब कुछ थी। अचानक कावेरी जी आ गई। दाई माँ ने उसे समझाया कि वही उसकी माँ है, अब से वही उसका ध्यान रखेगी। नन्ही आनिया बहुत खुश हुई थी। उस दिन वो मामा कहते हुए जाकर कावेरी जी के पैरों से लिपट गई, पर उस संगदिल औरत ने उस मासूम सी बच्ची को ठोकर मारकर गिरा दिया। वो बच्ची जमीन पर गिर गई और रोने लगी, पर कावेरी जी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। दाई माँ ने आकर जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसको चुप करवाते हुए हैरानी से कावेरी जी को देखने लगी। आनिया के रोने की आवाज सुनकर आज पहली बार अजीत जी वहां आए, वरना पहले कभी उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके आते ही कावेरी जी ने जाकर आनिया को दाई माँ से छीन लिया और उसको चुप करवाने लगी। दाई माँ उनके बदले रंग को देखती ही रह गई। उस दिन के बाद से अजीत जी के सामने वो ऐसे दिखाती जैसे आनिया से बहुत प्यार करती है और उनके ना रहने पर बात बात पर उस बच्ची को डांटती मारती। ऐसे ही 2 साल बीत गए। दाई माँ से ये अत्याचार और देखा नहीं गया। उन्होंने अजीत जी को बात बताई तो कावेरी जी ने उल्टा उन्हीं पर गहनों की चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकलवा दिया। अब इस घर पर उनका एकाधिकार था और यही वो चाहती थी। अजीत जी को कभी आनिया और उसके आंसू नजर ही नहीं आए। वे पूरी तरह से उनके वश में थे। उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों और रूप चाल में उन्हें ऐसा फंसाया कि अजीत जी वही सुनते जो वे कहती और वही करते जो वे कहती। आनिया का आखिरी सहारा दाई माँ थी, वही उसको प्यार करती थी, पर उससे वो भी छिन गया। उस नन्ही बच्ची को समझ ही नहीं आया कि उसको किस गुनाह की सजा मिल रही है। आनिया 5 साल की थी और तभी से कावेरी जी उससे घर का सारा काम करवाती थी, जबकि उसे काम करना आता भी नहीं था। कभी कहीं चोट लगती तो कभी कोई देखने वाला नहीं होता था। अजीत जी कभी गलती से पूछ लेते तो कावेरी जी झूठा इल्जाम लगा देती कि गली के बच्चों के साथ रोज ही सारा दिन खेलती है और लड़ती है तो चोट लग जाती है।
5 साल की आनिया हतप्रभ सी उन्हें देखती ही रह जाती, पर बोलती कुछ नहीं। वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसके पिता उसकी ना ही सुनेंगे, ना ही उसकी बात पर विश्वास करेंगे। जैसे दाई माँ के लाख कहने पर भी उन्होंने उनकी सच्चाई का विश्वास नहीं किया था और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। उसके नाजुक से दिल पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा था और वो अजीत जी से विमुख हो गई थी। सारी उम्मीदें छोड़ दी थी उसने। अकेले में अपनी माँ की तस्वीर लेकर रोती थी, पर किसी से कुछ नहीं कहती थी। जब कुछ दिन तक लगातार अजीत जी को आन्या के शरीर में कहीं ना कहीं जख्म दिखने लगे और हर बार कावेरी जी यही कहती कि सारा दिन बाहर खेलती और लड़ती है, तो उनकी शिकायतों से परेशान होकर उन्होंने आन्या का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अनजाने में उन्होंने उस पर उपकार कर दिया था। अब वे खुद सुबह उसे स्कूल छोड़ आते कि कहीं रास्ते से कहीं और ना भाग जाए, और लेने के लिए भी खुद जाते। आन्या का आधा दिन स्कूल में बीतता तो आधा घर के कामों में। रात को जागकर पढ़ाई करती, क्योंकि एक वही काम था जिससे उसको खुशी मिलती थी। पढ़ाई को लेकर स्कूल से टीचर की कभी कोई शिकायत नहीं आई। धीरे धीरे उसे भी काम करना आ गया तो चोट भी लगनी कम हो गई, धीरे धीरे बंद हो गई। घर में माहौल ऐसा था कि आन्या छोटी सी उम्र में सारा दर्द अपने अंदर छुपाकर हंसना मुस्कुराना सीख गई। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतनी गंदी जिंदगी जी रही है। घर में एकदम शांत रहती तो स्कूल में वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाती। हंसती मुस्कुराती, खूब बातें करती, सबकी उससे दोस्ती थी। वो सबको हंसाती रहती थी। टीचर भी उससे खुश रहते थे। उसके लबों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पढ़ने में भी अच्छी थी और उसकी वजह से क्लास का माहौल बहुत अच्छा बना रहता था। खुद भी हंसती, दूसरों को भी हंसाती और साथ में पढ़ाती भी। वो 8 साल की थी जब घर में एक नन्हा मेहमान आया। कावेरी जी ने शादी के 5 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया था। बहुत मुश्किल हुई थी और बहुत बड़े ऑपरेशन से अजय हुआ था, इसलिए कावेरी जी 1 महीने तक बेड रेस्ट पर थीं। उस वक्त आनिया की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। बाहर नहीं जाती थी, घर में रहकर सारा दिन घर में काम करती थी। वो एक ग्लास उठाकर भी यहां से वहां नहीं रखती थी। सारी जिम्मेदारी 8 साल की आनिया के नाजुक कंधों पर आ गई थी, पर वो खुश थी क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे और नन्हा अजय उसकी खुशी का केंद्र था। हालांकि कावेरी जी उसे उसके पास जाने नहीं देती थी, पर जब वो नहाने जाती तो आन्या अजय के साथ खूब खेलती। अजीत जी के लिए सब ठीक चल रहा था। स्कूल से आन्या की तारीफ ही आती और घर में भी वो सब काम करती थी। अजय के होने के बाद से कावेरी जी को आन्या से और नफरत होने लगी कि उसके बेटे के हक में पाटीदार बनेगी वो, और अब उन्होंने अजीत जी के दिल में आन्या के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। बेचारी आन्या आए दिन बिना किसी कारण उनके कोप का शिकार बन जाती थी, पर एक शब्द नहीं कहती थी, सब खामोशी से सहती जाती थी। आंखों से आंसू भी बाहर नहीं आने देती, जिस पर कावेरी जी उसको ढीठ कहती और खुद भी उसे मारती पीटती।